الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان میں کتنے ایموشنل ایکسپریشنز یعنی جذبات کا اظہار ایک انسان کتنے طریقے سے کر سکتا ہے؟ ہاؤ مینی ٹائپس آر دیئر؟ در حقیقت اس کی کوئی حتمی گنتی نہیں ہے۔ بہرحال کچھ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک ہے فیئر یعنی ڈر، ایک ہے اینگر غصہ، سیڈنس اداسی، ڈسکسٹ یعنی بیزاری اور نفرت، اور سرپرائز یعنی حیرت، ٹرسٹ یعنی اعتبار، جوائے یعنی خوشی۔ اب انسان کیسا برتاؤ کرتا ہے، ہاؤ وی تھنک اینڈ بیہیو، انسان کا معاشرے میں رویہ کیسے ہوتا ہے، اسپیشلی ٹو میک ڈیسیجنز، بالخصوص جب ہم فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اکثر فیصلے وہ ہم جذبات سے مغلوب ہو کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غصے کے وقت کیا گیا فیصلہ، خوشی کے وقت کیا گیا فیصلہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں اوقات میں فیصلے نہ کیا جائیں، کیونکہ خوشی کے وقت انسان اوور ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے، کسی ایسی چیز کا وعدہ کر بیٹھتا ہے جو کہ اس نے نہیں کرنی تھی، بس جذبات کے غلبے میں آ کے وہ کوئی بات ایسی کر گیا۔ اسی طریقے سے غصے کے وقت بھی جب وہ فیصلہ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کر جائے جو کہ زیادہ نقصان دہ ہو، اور وہ فیصلہ مستقبل میں اس کو نقصان پہنچائے۔ یہی جذبات ایموشنز انسان کو عمل کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیز ایموشنز will drive you towards action۔ کسی کام سے محبت اس کام کے لیے ترغیب بن جاتی ہے، اور کسی کام سے نفرت اس کام کو چھوڑنے کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اور کبھی کبھار یہ جذبات ہمارا تعارف بن جاتے ہیں۔ People recognize us، people just get the impression of our personality from these emotions۔ او فلاں شخص تو بڑا غصیلا ہے، فلاں شخص ہر وقت اس کے چہرے پہ تو تبسم کھیلتا رہتا ہے، بڑا ہنسمکھ ہے، اس سے بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، انرجی فل ہو جاتی ہے۔ تو اٹ مینس دیٹ دیز ایموشنز اینڈ ایکسپریشنز آر آئیڈینٹیٹی، یہ ہماری شناخت ہے، اور ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم اپنے جذبات کو کنٹرول کرو، ایسا نہ ہو کہ جذبات تمہیں کنٹرول کرے۔ آئیے اب آگے اپنے سلسلے میں بڑھتے ہیں کہ what we are going to discuss today۔ ان جذبات کی اپنی زبان ہوتی ہے، بچہ ہو یا بڑا اپنے انداز سے اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، اور وہ انسان بڑا قابل ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اور ان سارے جذبات میں مدنی چینل کے ناظرین obviously we will not discuss each and every one، ہم ساروں کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے، سب کو ڈسکس کرنے کے لیے تو الگ الگ پروگرامز چاہیے۔ آج ہم بالخصوص جس خاص ایموشن کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈر، فیئر۔ اور یہ جذبہ انسان میں جب سے انسان ہے تب سے یہ جذبہ موجود ہے۔ آئیے یہ ہوتا کیا ہے، وٹ از فیئر، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلے، کام پہ آپ نے جانا تھا، جلدی جلدی تیاری کی، سیڑھیاں اتری، دروازے سے مین گیٹ سے باہر نکلے، اچانک یاد آیا موبائل فون تو میں اوپر بھول گیا ہوں۔ دوبارہ آپ اندر آئے، سیڑھیاں چڑھی، کمرے کے اندر گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، اچانک آپ کی نظر ایک چیز پر پڑی، کوئی عکس سا تھا، کوئی چیز تھی، آپ ڈر گئے، یو فریز، آپ جم گئے، ہارٹ بیٹ تھوڑی تیز ہو گئی، بلڈ پریشر کا ریٹ بھی تیز ہو گیا، یہ پیوپلز جو تھیں آنکھوں کی پتلیاں یہ پھیل گئیں، اور اس وقت آپ نے محسوس کیا کہ دیر از این ایڈرینالین رشز تھرو یور برین اینڈ یور باڈی۔ یہ خاص قسم کا ہارمون ہوتا ہے ایڈرینالین، جو کہ اس وقت میں انسان کے خون میں سے رش کرتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اب ذہن کے کونے میں وہ جو چیز بیٹھی ہوئی تھی جس سے آپ بچپن سے ڈرتے چلے آ رہے ہیں، وہ سامنے نظر آ رہی ہے کمرے میں، کیسی حالت ہوگی اور کس طریقے سے اس بیڈ روم میں کھڑے کھڑے آپ کے ذہن سے سوچیں گزر رہی ہوں گی۔ پھر اچانک آپ نے جلدی سے لائٹ جلائی، तो पता चला कि वो जो जैकेट मैं लटका के गया था उस जैकेट का अक्स अंधेरे में नजर आ रहा था। आप मुस्कुराए और आपने लाइट बंद की और वापस अपने काम में चले गए। अब ये क्या था? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। ये एक अमल का रद्दे अमल था। याद रखिए, ये डर, ये खौफ, ये दिमाग से आता है। रिमेंबर, इट कम्स फ्रॉम द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज द हेडक्वार्टर। क्योंकि ब्रेन, इंसान का दिमाग, ये हेडक्वार्टर है और इन सारे जज्बात को डील करता है। याद रखिए, जब लोग डरते हैं तो दिमाग का एक खास हिस्सा है जिसको हिप्पोथैलेमस कहा जाता है, वहां से काफी ज्यादा केमिकल्स निकलते हैं। इन केमिकल्स की वजह से पूरा जिस्म अलर्ट और मसल्स टेंस हो जाते हैं, और ये कुछ तब्दीलियां होती हैं जो साइंस कहती है डर और खौफ के वक्त इंसान के जिस्म में रूनुमा होती हैं एकदम से। दीज रिमार्केबल चेंजेस अकर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीसेस, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्यूपल्स डायलेट, इंसान की पुतलियां फैल जाती हैं। नॉन एसेंशियल सिस्टम्स टर्न ऑफ, और इंसान के जिस्म में जो दीगर कुछ निजाम चल रहे हैं वो रुक जाते हैं। जैसे निजाम इन्हजाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाने को हजम करता है वो रुक जाता है। इम्यून सिस्टम इंसान का, यानी वो निजाम जो इंसान की कुव्वत मुदाफियत को डील करता है, वो भी रुक जाता है। और इस एमरजेंसी में जिस्म एनर्जी को सेव करता है, और इस वक्त दिमाग स्मॉल फैक्ट्स यानी छोटी छोटी चीजों पर फोकस नहीं करता, क्योंकि दिमाग डरा हुआ है। एंड द पर्पज ऑफ अ ब्रेन इज टू मेक अस सेफ, और हमारे दिमाग का मकसद ही है कि हमें सेव किया जाए। ये तमाम सिस्टम और प्रोसेस जो मैंने आपको बताया अभी, इसे साइकोलॉजी में फ्लाइट और फियर रिस्पॉन्स कहा जाता है। याद रखिएगा, फ्लाइट और फियर रिस्पॉन्स इज वेरी जनरल, अ वे टू किक द बॉडी इन टू हाई गियर, पुटिंग ऑल सेंसेज ऑन हाई अलर्ट, अलाउइंग फॉर क्विक रिस्पॉन्स। यानी जिस्म के तमाम आजा और हवासे खमसा वो हाई अलर्ट हो गए ताकि फौरी तौर पे कोई रिस्पॉन्स किया जा सके। आइए यहां मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। डर के हवाले से सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये तो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसको ये बीमारी थी, जिसको रेयर जेनेटिक कंडीशन कहा जा सकता है, उर्बेक विजन डिजीज। इट causes द parts ऑफ ब्रेन टू harden एंड वेस्ट अवे। ये बीमारी ऐसी होती है मदनी चैनल के नाजरीन कि इसमें इंसान का दिमाग सख्त सा हो जाता है और उसके दिमाग के कुछ हिस्से वो वेस्ट हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। इन्हीं हिस्सों में वो हिस्सा भी होता है जो डर महसूस करता है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। अंधेरे जंगल में, सख्त रात में डर नहीं लगता था। सांपों से, बिच्छुओं से डर नहीं लगता था। वो ये कहता था कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फियर बट आई सिंपली नॉट फील इट। मुझे पता है, मैं समझता हूं कि डर क्या होता है, लेकिन मुझे वो महसूस नहीं होता। बहरहाल, ये एक बंदा तो नहीं होगा, दुनिया में बहुत से लोग इस कंडीशन का शिकार हो सकते हैं। मैंने एक बंदे के बारे में पढ़ा तो सोचा ये दिलचस्प मालूमात आप सभी शेयर कर दूं। बहरहाल, डर जरूरी है। इससे इंसान डेंजरस सिचुएशंस में मुश्किल फैसले आसानी से कर लेता है, और वाकई खौफ और डर तो बहुत जरूरी है। याद रखिए, इस दुनियावी जिंदगी की रौनकों, मुसर्रतों और रानाइयों में खोकर हिसाब आखरत के बारे में गफलत का शिकार हो जाना यकीनन नादानी है। याद रखिए, हमारी निजात इसी में है कि हम रब्बे कायनात और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए नेकियों का जखीरा इकट्ठा करें और गुनाहों के इर्तकाब से परहेज करें। इस मकसद अजीम में कामयाबी हासिल करने के लिए दिल में खौफ खुदा का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नेमत हासिल ना हो, गुनाहों से फरार और नेकियों से प्यार तकरीबन नामुमकिन है। इस नेमत उज़्मा के हुसूल में कामयाबी की ख्वाहिश रखने वाले इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए दर्जा ज़ैल बातें जो मैं करने लगा हूं खौफ के मुतल्लिक, वो बहुत जरूरी होंगी। याद रखिएगा, मुतलकन खौफ से मुराद वो कल्बी कैफियत है, इट्स अ फीलिंग इन योर हार्ट, जो किसी नापसंदीदा अमर के पेश आने की तवक्को के सबब पैदा हो। मसलन, फल काटते हुए छुरी के हाथ से जख्मी हो जाने का डर, जबकि खौफ खुदा अज़्ज़ वजल का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की बेनियाजी, उसकी नाराजगी और उसकी गिरफ्त और उसकी तरफ से दी जाने वाली सजाओं का सोचकर इंसान का दिल घबराहट में मुब्तला हो जाए। قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے تین درجات ہیں۔ مدنی جنگ کے ناظرین، دس ٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلا ضعیف یعنی ویک، کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔ مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جھجری لے کر رہ جانا اور پھر غفلت اور معصیت میں گرفتار ہو جانا۔ یعنی آج اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں بیان ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ہم جہنم کی سزاؤں کا بتاتے ہیں، دیگر عذابات کا بتاتے ہیں، اس وقت تو ایک دم شیورنگ ہوتی ہے، ڈر سا لگتا ہے، ایسے کر کے ہوتا ہے انسان، لیکن پھر وہ اثر زیادہ دیر رہ نہیں سکتا۔ دیٹ فیئر از ناٹ انف ٹو انووک دا فیئر آف اللہ ان یو۔ اور سیکنڈ ہے معتدل، ماڈریٹ، متوسط، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنا۔ اٹ از اے بیلنسڈ اپروچ، آلویز پلازیبل، یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، تو وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوگا اور گناہوں سے بچے گا۔ اور اسی طرح تیسرا قوی ہے، اس کو مضبوط کہتے ہیں، اٹس اسٹرانگ بٹ اٹس سم تھنگ ایگزیجریٹڈ، اوور ریٹڈ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی، بیماری اور بے ہوشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مقصد اللہ رب العزت کے عذاب کے بارے میں سنا اور مغفرت اور بخشش سے نا امید ہو گئے اور کہا کہ مجھ پہ تو عذاب ہی آ کے رہے گا، اور اس ڈر سے بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رہے ان میں سب سے اچھا وہ معتدل ہے، یعنی بیلنسڈ اپروچ ہے، ماڈریٹ ہے۔ اور اس کی بہت اچھی مثال دی گئی کہ اگر جانور والی گاڑی ہے، یعنی یہ گاڑی ہے جس کو جانور کھینچتا ہے، تو کبھی کبھار اس جانور کو تیز کرنے کے لیے چابک مارا جاتا ہے، وپ ماری جاتی ہے نا، ایک کوڑا سا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو اتنی زور سے چابک مار دیا جائے کہ وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اتنی آہستہ سے اس کو چابک ماری جائے کہ اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، اس کی سپیڈ میں فرق ہی کوئی نہ آئے، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک ماڈریٹ انداز میں آہستہ سے اس کو چابک ماری جائے جس سے اس کی سپیڈ تیز ہو جائے، تو اس کو فائدہ ہوگا۔ ناؤ کم ٹو سائیکالوجی، آئیے ماہرین نفسیات کی کچھ رائے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فیئر اور ڈر در حقیقت یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ فیئر از اے پاور فل اینڈ پرائمیٹیو ہیومن ایموشن۔ کہا جاتا ہے کہ ڈر ایک بہت مضبوط اور پرانا انسانی جذبہ ہے۔ جب انسان ڈرتا ہے تو اس کی باڈی کے مختلف طرح کے ریسپانسز ہوتے ہیں، اس کے ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے، ایڈرینالین اس کا زیادہ ایکسکریٹ ہوتا ہے، لیکن ایموشنل ریسپانس سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو ڈر کو انجوائے کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ان کو کرتے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن بعض لوگ چھوٹے سے ڈر والے کام کے بھی قریب نہیں جاتے۔ تو سائنس کے مطابق یہ رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب مشکل ہے۔ یعنی ڈر انسانی زندگی میں ہے تو کیوں پیدا ہوا؟ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تجربے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں کسی چیز کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی ایسی بات ہوئی، انسان نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ڈر گیا، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، اور کبھی کبھار انسان کسی بلندی پر جاتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، چکر آ جاتے ہیں، الٹی سی آنے لگ جاتی ہے، یہ بھی ڈر پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ اینڈ ناؤ لیٹس ڈسکس سم تھنگ، کرونا وائرس فیئر، کرونا انگزائٹی جس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں کرونا وائرس، کووڈ 19 نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر انسان ڈرا ہوا، سہما ہوا سا لگتا ہے، اور اس وقت غالباً یہ دنیا میں سب سے بڑا ڈر ہے وہ کرونا وائرس کا ہے۔ تو دنیا میں ماہرین نفسیات سے جو سوال پوچھے گئے، آئیے ان میں سے کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، کوئی یہ سوچ رہا ہے یہ وائرس مجھے نہ لگ جائے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کیا مجھے اپنی بڑی عمر کے رشتہ دار، بالخصوص والدین وغیرہ سے ملنا چاہیے، ٹیشو پیپر، سرجیکل ماسک اور سرجیکل گلوز کیا مجھے پہننے چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، یہ انسان کا قدرتی اور فطرتی رد عمل ہے۔ پینڈیمک جب آئے گی، بیماری آئے گی، मीडिया फ्लडेड हो जाएगा न्यूज से, इंसान तो डरेगा। अच्छा, इस पे मजीद गुफ्तगू करने से पहले एक चीज ये तय कर लेते हैं कि दीज आर टू वर्ड्स। मदनी चैनल के नाजरीन, ये दो अल्फाज याद रखिए, एक फियर और एक एंग्जाइटी, इन दोनों में फर्क होता है। फियर से मुराद है स्पेसिफिक एंड इमिनेंट डेंजर, यानी कोई खास और फौरी तौर पे नजर आने वाला खतरा, यानी ऐसी चीज का खतरा जिसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म है कि ये मेरे लिए खतरा है। और एंग्जाइटी इट्स वेग एंड फ्यूचर थॉट। एंग्जाइटी उस डर को कहते हैं जो मुस्तकबिल में हो और उसका कंफर्म भी ना हो कि पता नहीं आनी है या नहीं आनी, वैसे इंसान डरा हुआ है। अब कोरोना वायरस का जो डर है ये एंग्जाइटी है। व्हाट इफ, पता नहीं मुझे कोरोना वायरस होगा, अगर हो गया तो अलामत जाहिर होंगी, अगर अलामत जाहिर होगी तो क्या मैं बीमार हो जाऊंगा, ठीक हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। तो इफ 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 बहुत ज्यादा है, अगर 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 मगर बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो ऑल दीज एंग्जाइटी, अननोन फियर एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस, ये वो सवाल आता है जिनका हमें पता नहीं है। सो ऑल दीज आर एक्चुअली साइकोलॉजिकल ओवर रिएक्शन, ये हमारी जिंदगी में नफसियाती तौर पर ओवर रिएक्शन है। और इस हालत में जो हमें पता ही नहीं होना या नहीं होना वो हमारे जहन में सवार हो जाता है। हम जिस चीज को काबू कर भी सकते हैं उसको काबू नहीं कर पाते। दिस थिंग इज मैनेजेबल, इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये अजीब अजीब से सवालात हमारे जहन में ऐसा छा जाते हैं कि वो जो काम हम कर भी सकते हैं वो भी हमसे नहीं होता। लोग ओवर रिएक्शन कर रहे हैं, लोग ज्यादा डर गए, एक चीज का पता ही नहीं हो या ना हो, और अगर हो भी जाए तो आसानी से कंट्रोल इलाज है। अब ऐसी चीज इंतहाई मुश्किल बन गई सिर्फ हमारे ज्यादा सोचने से। इसका नुकसान क्या हुआ, वी फील हेल्पलेस, पावरलेस एंड ओवरवेल्ड, हम लाचार हो गए, मजबूर समझने लगे अपने आप को, इंफॉर्मेशन की वजह से ओवरलोड हो गए। हमने क्या करना है, अपना कंट्रोल, अपनी एम्पावरमेंट, अपनी एजेंसी मजबूत करनी है, अपने जज्बात पे खुद कंट्रोल करना है, अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप को दलायल देने हैं ताकि हम इस चीज को रोक सके। हम सिर्फ एहतियात ही कर सकते हैं और क्या करेंगे, बस WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, लोगों से मिलना जुलना बंद करें, सोशल डिस्टेंसिंग, बस। अब इसके बावजूद अगर कुछ हो गया तो फिर हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो नंबर एक, इस बात पे फोकस करें कि इस मर्ज की अलामात बहुत हल्की होती हैं और उनका इलाज भी मुमकिन है। अच्छा, अब ये तो नहीं पता कि क्राइसिस कब खत्म होगा, नहीं पता ना, ये सोचें कि ग्लोबल फोर्सेस, दुनिया के अंदर साइंटिस्ट की एक बड़ी तादाद इसका इलाज ढूंढने में, इसकी वैक्सीनेशन ढूंढने में लगे हुए हैं और वाकई किसी वक्त भी खुशखबरी आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बकायदा दो वैक्सीनेशन को टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। सो इट मींस पीपल आर वर्किंग। अब इस तरह की एनर्जी वाली न्यूज आप सुने। नंबर टू, जो कुछ आप कर सकते हैं उस पर कंट्रोल करें। आप खरीदारी करने गए, आप ये तो नहीं ना कर सकते कि जो मार्केट में आए उन सब के हाथों को धुलवाएं और सैनिटाइज करें, ये तो नहीं कर सकते। तो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, अपना मास्क पहन लें और फिर मुतमईन हो जाएं कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली। नंबर तीन, फोकस ऑन थिंग्स व्हाट यू कैन डू, नॉट ऑन व्हाट यू कैंट डू। उन चीजों पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, आप दुकान पे नहीं जा रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, इन चीजों को ना सोचें, सोचेंगे तो दिमाग परेशान रहेगा। उन चीजों पे सोचें जो आप कर सकते हैं। अल्लाह के करम से आप खाना खा सकते हैं, अल्लाह के करम से अपने बच्चों के साथ हैं, अल्लाह के करम से आप ऊपर नीचे चल के जा सकते हैं। बुरा वक्त चला जाएगा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। सो फोकस ऑन गुड, डोंट फोकस ऑन बैड। उस चीज के ऊपर देखें जो कि हम फोकस कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर नमाज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में, तस्बीहात और जिक्र अज़कार में गुजारिए। नंबर फोर, इफ यू फील पैरालाइज्ड बाय डिफिकल्ट फीलिंग्स, अगर ये सख्त किस्म के हालात ने आपको जहनी तौर पे बहुत ज्यादा परेशान कर ही दिया है, तो बहुत ही कारामद, आजमूदा और सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा देखिए। और वो क्या है, स्टार्ट गिविंग। मदद करें फैमिली मेंबर्स की, हमसायों की, और वाकई इस हालात में जब बड़े क्रिटिकल हालात है, सिर्फ मजदूर परेशान नहीं है बल्कि दर्जी भी, कुछ टीचर्स भी, और ऐसे और पेशावर लोग जिनकी रोजाना की रोजी होती थी रोजाना का उनकी तनख्वाह का डेली वेज का सिस्टम होता था वो भी परेशान है। और अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, सदका करेंगे आपको खुशी हासिल होगी, किसी की मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला यू विल फील एम्पावर्ड, आपके अंदर एक ऐसी बात पैदा होगी कि मेरे पास है मैं दे सकता हूं, और ये चीज इंसान को कॉन्फिडेंस दिलाती है, आप अंदर से खुश हो जाएंगे। इस हवाले से दावत इस्लामी आपको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी दे रही है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात और अमीर अहले सुन्नत की काविशें, कोरोना वायरस जब आया जो अफराद मुस्तहिक हैं उनके लिए फंड्स इकट्ठे किए गए, इंतहाई मुनज्जम बेहतरीन क्रेडिबल बाएतमाद अंदाज से हमने मुस्तहकीन तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया, और फिर थैलेसीमिया के शिकार अफराद जिनके लिए खून एक फ्यूल की हैसियत रखता है, लॉकडाउन की वजह से उन्हें खून में कमी का सामना करना पड़ा। अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, दावत इस्लामी कितनी बड़ी वर्कफोर्स मोबिलाइज हुई, पाकिस्तान भर में ब्लड कैंप्स खुले और इन लोगों की मदद हुई, अमीर अहले सुन्नत की सदा पर लब्बैक कहा गया। तो ये एक बाएतमाद प्लेटफॉर्म है, आपकी अपनी दावत इस्लामी है ना। आप जानते हैं कि कुरान और सुन्नत की इस आलमगीर मदनी तहरीक ने कितने मुख्तसर अरसे में कुरान और सुन्नत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जामियात मदारिस ऑनलाइन की इतनी बड़ी एक नेटवर्क हमारे पास मौजूद है, सोशल मीडिया और मदनी चैनल के जरिए मदनी काम की धूम है। तो आप दें, पैसा हो, इत्मीनान भरे अल्फाज हो, हौसला हो, ट्राई टू लव द एक्ट ऑफ गिविंग। और एक और चीज मैं आपसे अर्ज करता चलूं, और वो है आई विल प्रिस्क्राइब यू डाइटिंग इन न्यूज कंजप्शन। खाने की तो डाइटिंग करते हैं ना आप, नहीं, आप न्यूज की डाइटिंग करें, जो इतनी खबरें आप ले रहे हैं ना इस पर डाइटिंग करें। ब्रेकिंग न्यूज में नंबर वन आने के लिए जो इस वक्त एक रेस चल रही है, आप और मैं पीछे जा रहे हैं उसमें। ट्राई टू फोकस ऑन नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज, ये जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज हैं इन पे फोकस करें। मेरी माने एक दिन, आधा दिन जो है ना, एक दिन ऐसा तय करें कि आधा दिन आपने मोबाइल नहीं पकड़ना, यू विल नॉट यूज मोबाइल फोन। किताब पढ़ें, वॉक करें, गार्डनिंग करें, खाना पकाएं, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, नो न्यूज, ब्लॉक द न्यूज फ्लो, देखिए कितनी परेशानी आपकी कम हो जाएगी। और आखिर में वाकई इफ इट्स डिफिकल्ट टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ टनल, अगर आपको वाकई टनल के आखिर में लाइट नजर नहीं आ रही तो याद रखिए यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। रिमेंबर ह्यूमन बींग्स आर वेरी अडेप्टेबल क्रिएशन, इंसान इस दुनिया में सदियों 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 से है, और ऐसी बीमारियां तो उस वक्त भी आती रही जब साइंस का एस भी नहीं याद हुआ था। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन एनी डिजीज विदाउट सेंडिंग डाउन इट्स क्योर। अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी कि उसकी शिफा भी ना उतारी हो। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब स्ट्रेस हो, परेशान हो और बहुत ज्यादा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो तो क्या करते हैं इंसान ऐसे मौके में ना, उससे राबता करता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उससे ना प्यार मिलता है। तो माँ बाप वो भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है वो रहमान है, रहीम है, कय्यूम है, कुद्दूस है, गफ्फार है, सत्तार है। और राबता करना भी बहुत आसान है, वो रास्ता अख्तियार करें जो उसकी तरफ ले जाता है। लॉकडाउन में इस दुनिया के रास्ते तो बंद हैं, लेकिन उसकी तरफ ले जाने वाले रास्ते खुले हैं। तौबा का दर खुला है, पांच नमाजें हैं, शाबान के रोजे हैं और जिक्र अजकार हैं, कमाल है। आइए अब कुछ बातें फोबिया की कर लेते हैं। फोबिया का मतलब होता है ये डर की एक किस्म है। डर की किस्म से मुराद ये है, यूएसए में 19 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फोबिया। ये ट्रिगर होता है, कोई एक खास चीज होती है जिससे इंसान बहुत डरता है। इट्स एन एग्जेजरेटेड और इरेशनल फियर। मिसाल के तौर पे एक है क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर। लोगों को बंद जगहों से जाने का डर होता है, टनल से और ऐसी बंद जगहों से जाने का डर होता है। एरोफोबिया, हवाई जहाज पे डर लगता है उनको। एरेक्नोफोबिया, स्पाइडर से, मकड़ों कीड़ों मकोड़ों से और ये जो होते हैं इनसे डर लगता है। ड्राइविंग फोबिया, ड्राइविंग करने से डर लगता है। जू फोबिया, एनिमल से, जानवरों से डर लगता है। एक्वाफोबिया, पानी से डर लगता है। एस्केलोफोबिया, लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है। नोमोफोबिया, मोबाइल के बगैर वो उनकी जान निकल जाती है कि मोबाइल चला गया मैं क्या करूंगा। तो 30 साल के बाद ये फोबिया आमतौर पर नहीं होते, बचपन में टीन एज के अंदर ये शुरू हो जाते हैं। एंड रिमेंबर दे आर हाईली ट्रीटेबल, ये इनका इलाज बहुत आसान है। अगर मरीज के अंदर ऐसी अलामत आ रही हो, इस डर को आप जान लें आसानी से और साइकेट्रिस्ट से यानी माहिर नफ्सियात से इसका मशवरा करें। और इसकी काउंसलिंग होती है। मिसाल के तौर पर किसी को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसके साथ बात करेगा, सबसे पहले उसको फ्लाइंग के बारे में कुछ हो सकता है बताया जाए, फिर उसको एरोप्लेन की पिक्चर्स दिखाई जाएं मुख्तलिफ जहाज़ों की, और फिर उसको एयरपोर्ट पे हो सकता है भेजा जाए, उसके बाद उसको सिमुलेटेड केबिन यानी एक नकली जहाज का होगा उसमें बिठा के उसको प्रैक्टिस कराई जाए, और फिर आखिर में उसको एरोप्लेन पे बोर्ड करवाया जाए। बहरहाल ये तो मैंने थोड़ा सा वैसे ही जो आपसे शेयर किया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। याद रखिए मदनी चैनल के नाजरीन, तीन स्टेजेस होती हैं, टेंशन होती है इंसान को, एंग्जाइटी होती है और डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक बीमारी है, सिर्फ अल्फाज के साथ और सिर्फ सुकून देने से वो ठीक नहीं होती, बीमारी का इलाज होता है। और फिर मैं यही बात कहूंगा कि सबसे बेहतर तो ये है कि इंसान के दिल में ऐ काश खौफ खुदा पैदा हो जाए। जब उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क वो पैदा हो जाएगा, औली अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो ये दुनिया के दुख दर्द उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना फकीह अबुल लैस समरकंदी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के खौफ की अलामात 8 चीजों में जाहिर होती है। यानी खौफ तो कल भी कैफियत का नाम है, अब किसी को कैसे पता चले कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, ये 8 चीजें देख ले। नंबर 1, इंसान की जबान में, यानी अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी जबान से झूठ गीबत फजूल गोई नहीं निकलेगी, बल्कि उसकी जबान हमा वक्त अल्लाह के जिक्र में, तलावत कुरान में और इल्मी गुफ्तगू में मसरूफ रहेगी। नंबर 2, उसके शिकम में, यानी इस तरह के अपने पेट में हराम को दाखिल नहीं करेगा और हलाल चीज भी पकतरे जरूरत खाएगा। नंबर 3, उसकी आंख में, इस तरह के वो हराम देखने से बचेगा और दुनिया की तरफ से रगबत नहीं करेगा बल्कि हसूल इबरत के लिए देखेगा। उसके हाथ में कि वो इस तरह कभी अपने हाथ को हराम की जानिब नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमेशा अल्लाह की इताअत के कामों में इस्तेमाल करेगा। उसके कदमों में, इस तरह के वो अल्लाह की नाफरमानी में वो कदम नहीं उठेंगे बल्कि अल्लाह की ताअत के लिए उठाएगा। उसके दिल में, इस तरह के उसके दिल से बुग्ज़ कीना और मुसलमान भाइयों से हसद करने को दूर कर देगा और उसके दिल में खैर खाई और मुसलमानों से नरमी का सलूक पैदा हो जाएगा। उसकी समात में, इस तरह के वो जायज बात के अलावा कुछ नहीं सुनेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे साईं भाइयों, अल्लाह ताला का खौफ किस तरह इंसान के लिए जरूरी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जो शख्स अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरती है, और जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से डरता है तो अल्लाह ताला उसे हर शय से खौफ सदा कर देता है। यानी अल्लाह ताला के खौफ ने उसको बाकी सब चीजों से खौफ सदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन का दिल अल्लाह ताला के खौफ से लरसता है तो उसकी खताएं इस तरह झड़ती हैं जैसे दरख्त से उसके पत्ते झड़ते हैं। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि उसे आग से निकालो जिसने मुझे कभी याद किया हो या किसी मकाम में मेरा खौफ किया हो। मदनी चैनल के नाजरीन, इन बातों को पढ़ते रहिए, इन अहदीस को, कुरानी आयात को और औलिया अल्लाह के जिक्र को पढ़ते रहिए, बिल्कुल उसको स्टडी में रखिए कि कभी अगर ये कैफियत दिल से हट भी जाए तो रिवाइज करने से ये कैफियत दोबारा पैदा हो जाती है। ये जो ईमान का बीज अल्लाह के करम से हमारे सीने में है, यकीनन ये स्टडी करने से, रीडिंग करने से एक नई बहार आ जाती है, और बिलखसूस अगर अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत मुयस्सर आ जाए। अब जैसे हालात हैं, हमें ये देखना है कि इन हालात में सोहबत कैसे मुयस्सर आए। मदनी चैनल बेहतरीन जरिया है और मदनी चैनल पर रात 9 बजे चलने वाला प्रोग्राम दिलों की राहत, अमीर अहले सुन्नत हैं, जानशीन अतार हैं, निगरान शूरा हाजी अब्दुल हबीब साहब, माशाल्लाह कैसा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन है, हमारे मुबल्लिगीन का पीर मुर्शिद भी हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें बताई जाती हैं जो वाकई दिलों की राहत का सबब होती हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ये सिलसिला खुद भी देखें, अपने घर वालों के साथ देखें, ऐसा टाइम एडजस्ट कर लें कि ये सिलसिला, ये प्रोग्राम आप जरूर देखें, और फिर मदनी मुजाकरा, उसकी तो क्या ही बात है। और जो मैंने आपको बातें बताएं, ये एक बड़ी मशहूर किताब है, खौफ खुदा अलमदीनतुल इल्मिया की पेशकश है, इसके अंदर ऐसे वाकयात दर्ज हैं किस तरीके से खौफ खुदा बढ़ाया जाए, किस तरीके से खौफ खुदा अपने दिल में पैदा किया जाए, हकायात हैं, گفتگو کی گئی ہے، احادیث مبارک اور سب سے بڑھ کے قرآنی آیات کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ ایک خزانہ ہے، کتنا کچھ اس کے اندر ہر ہر موضوع پر موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔